नमस्कार भारत, तारीख 18 सितंबर, दिन मंगलवार। मैं हूँ मानसी दास। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की कांग्रेस के योगदान की तारीफ।
देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया। एक बड़ा योगदान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का है।
गोवा में कांग्रेस ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। बीजेपी के लिए कितने मुश्किल हैं हालात।
मनोहर पर्रिकर खुद जो मुख्यमंत्री है और दो मंत्रीगण जो भाजपा के हैं, वो तीन लोग अस्पताल में हैं और उनकी वो अभी तक अस्पताल से नहीं आ सकते।
भारत में अफ्रीकियों पर होने वाले हमलों को कैसे देखा जाता है अफ्रीका में। होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। अमेरिका ने 200 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर नया टैरिफ लगाया है। ये आयात शुल्क 5,000 से ज्यादा वस्तुओं पर लागू होगा और इस टैरिफ सीरीज में अब तक सबसे बड़ा शुल्क है। चीन ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो वैसी ही जवाबी कार्रवाई चीन भी करेगा। आयात शुल्क 24 सितंबर से लागू हो रहा है, जिसकी शुरुआत 10% से होगी, लेकिन अगले साल की शुरुआत में बढ़कर 25% हो जाएगी। ट्रंप सरकार का कहना है कि अमेरिका में अब शरणार्थियों को बसने की इजाज़त कम लोगों को दी जाएगी, यानी सालाना दी जाने वाली अनुमतियों को घटाकर 30,000 कर दिया जाएगा। ये नया नियम अमेरिका के अक्टूबर से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगा। 2018 में अब तक सबसे कम 45,000 अनुमतियां ही दी गई हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई सीमा लागू करने की घोषणा की। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका 2019 में 3,10,000 शरणार्थियों की याचिका प्रोसेस करेगा। हमारा प्रस्ताव है कि हम इस नई सीलिंग में 30,000 शरणार्थियों को बसने की इजाजत दें और बाकी 2,80,000 शरणार्थियों की याचिका प्रोसेस करें। ये बचे हुए लोग पहले से मौजूद 8,00,000 शरणार्थियों की लिस्ट में शामिल होंगे। शरणार्थियों के बारे में ये बड़े बड़े आंकड़े बताते हैं कि अमरीका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उदार देश है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। जुलाई में थाईलैंड गुफा रेस्क्यू में हिस्सा लेने वाले ब्रिटिश गोताखोर ने अरबपति इलॉन मस्क पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है, क्योंकि मस्क उन्हें बार बार बच्चों का यौन शोषण करने वाला कह रहे थे। ये वही बचाव ऑपरेशन था जहां बाढ़ वाली गुफा में 12 लड़के और उनके फुटबॉल कोच फंस गए थे और कई दिन की मशक्कत के बाद उन्हें बचाया जा सका था। टेस्ला कंपनी के प्रमुख इलॉन मस्क ने बिना किसी सबूत के गोताखोर वर्नॉन अन्सवर्थ के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं, जिनमें से एक है कि वो बच्चों का बलात्कार करते हैं। दायर मुकदमे में मुआवजे के तौर पर $75,000 और मस्क पर रोक लगाने के आदेश की मांग की गई है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले प्रांत इदलिब में सीरियाई सरकार के सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच एक सेना मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। पुतिन ने कहा कि चरमपंथी विद्रोहियों को इस क्षेत्र से हटना चाहिए। इसके बदले में रूस इदलिब में कोई नया सैन्य ऑपरेशन नहीं चलाएगा। पुतिन ने कहा, मीटिंग में हमने हालात पर चर्चा की और फैसला किया कि इस साल अक्टूबर की 15 तारीख तक 15-20 किलोमीटर दायरे का एक सेना मुक्त क्षेत्र बनाएंगे। अलकायदा के सहयोगी अल नुसरत संगठन के चरमपंथियों को भी वहां से हटना होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। अमेरिका की संसदीय न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष चक ग्रासले का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट जज के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नामांकित व्यक्ति ब्रेट कैवेनो पर लगे यौन शोषण की पूरी तरह से जांच करेंगे। संसद ने अगले सोमवार का दिन दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए तय किया है। क्रिस्टीन फोर्ड नाम की महिला ने यौन शोषण का जो दावा किया है, उसके बाद डेमोक्रेट सांसदों के साथ साथ कुछ रिपब्लिकन सांसद भी जज के चुनाव को रोके रखने की बात कर रहे हैं। इन आरोपों को ब्रेट कैवेनो ने झूठा बताया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें संसद पर पूरा भरोसा है और साथ ही कैवेनो के रिकॉर्ड पर कभी भी कोई दाग नहीं लगा है। सऊदी अरब के महिला विश्वविद्यालय ने छात्राओं को बिना पूर्व अनुमति के आने जाने की इजाजत दे दी है। इस कदम को पुरुष अभिभावक सिस्टम से राहत के तौर पर देखा जा रहा है। राजधानी रियाद में प्रिंसेस नौरा बिन अब्दुल हमान विश्वविद्यालय ने कहा कि ये कदम छात्राओं और उनके परिवारों के लिए जिंदगी को आसान बनाने के लिए है और विश्वविद्यालय के बाहर ट्रैफिक की भीड़ को भी कम करेगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं लाइव। खबरों की शुरुआत अमरीका से, जिसने चीन के साथ व्यापार युद्ध को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 200 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर नया आयात शुल्क लगाया है। ये आयात शुल्क 5,000 से ज्यादा वस्तुओं पर लागू होगा और अब तक के लगाए आयात शुल्क में सबसे बड़ा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
ताज़ा लगे आयात शुल्क की लिस्ट में हैंडबैग, चावल और कपड़ों को भी शामिल किया गया है। हालांकि स्मार्ट घड़ी और प्ले पेन जैसी कुछ वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिसकी संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले अमेरिका के लकड़ी से बने फर्नीचर पर आयात शुल्क नहीं लगा था, लेकिन इस बार इस पर भी शुल्क लगा दिया गया है और माना जा रहा है कि इसका सीधा असर अमेरिका में फर्नीचर बाजार पर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये नए टैरिफ चीन के व्यापार करने के अनुचित तरीकों के जवाब में हैं और साथ ही सब्सिडी और नियमों को लेकर हैं, जिसके लिए कुछ क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को स्थानीय भागीदारों के साथ काम करना होता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बदलाव किए जाने को लेकर स्पष्ट रहा है और चीन को अमेरिका के साथ उचित तरह से व्यापार करने का हर मौका दिया गया है। इधर चीन ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर अमरीका आयात शुल्क लगाता है तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा था, अगर अमरीका आयात शुल्क लगाता है तो ऐसे सूरत में चीन अपने हितों की रक्षा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। दूसरी बात यह कि इस कारोबारी जंग से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। हमने हमेशा कहा है कि व्यापार मसलों को बातचीत से सुलझाना ही ठीक रास्ता है और एक दूसरे पर भरोसा करके और मान सम्मान के साथ। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग। नए आयात शुल्क इसी महीने की 24 तारीख से लागू हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत 10% से होगी, लेकिन अगले साल की शुरुआत में बढ़कर ये 25% हो जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर चीन इसके जवाब में कोई कदम उठाएगा तो वो अगले चरण के आयात शुल्क लगाएंगे और फिर 267 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर शुल्क लगेगा, जिसका मतलब होगा कि अमरीका को निर्यात किए जाने वाले चीन के लगभग सभी उत्पाद इस दायरे में आ जाएंगे।
रिपोर्ट सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान। रुख भारत का करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ। हिंदुत्व से जुड़े इस कार्यक्रम के पहले दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और हिंदू धर्म और आरएसएस के बारे में बताया। कार्यक्रम में देश के कई जाने माने चेहरे नजर आए। क्या क्या खास रहा इस कार्यक्रम के पहले दिन, सुनिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
व्याख्यान माला क्यों आयोजित की गई, इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत का कहना था कि लोगों को उनके संगठन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में संघ को एक बड़ी ताकत के रूप में देखा जाता है।
संघ को समझने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्योंकि संघ आज एक शक्ति के रूप में इस देश में उपस्थित है, ऐसा अनुभव सारी दुनिया को होता है। स्वाभाविक उसकी चर्चा चलती है, चलनी भी चाहिए, परंतु चर्चा करने के लिए वस्तु स्थिति का पता भी होना चाहिए। चर्चा कैसी चले वो तो चर्चा करने वालों का अधिकार है, परंतु वास्तविकता क्या है ये जानकर चर्चा होती है तो उसमें से सार्थक निष्कर्ष निकलते हैं।
आरएसएस के इस आमंत्रण के बाद व्याख्यान के पहले दिन बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें प्रमुख रूप से नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मधुर भंडारकर, हंसराज हंस, रवि किशन, मालिनी अवस्थी, अनु मलिक, अनु कपूर के अलावा अभिनेत्री मनीषा कोइराला भी शामिल हुई। वहीं राजनेताओं में अमर सिंह कार्यक्रम में दिखे। इस दौरान मोहन भागवत का कहना था कि भारत की विविधता को देश की संस्कृति ने जोड़ने का काम किया है।
मैं तो कहता हूँ कि भारत के बाहर से जो संप्रदाय भारत में आए और उनके अनुयायी आज भारतीय लोग है, इस्लाम है, ईसाइयत है, वो अगर भारतीय है तो उनके घरों में भी उन्हीं संस्कारों का प्रचलन आज भी मिलता है। हमको जोड़ने वाली ये मूल्याधारित संस्कृति है और हम देखते अपने इतिहास को और अध्ययन करते तो हमारे ध्यान में आएगा, जब इन मूल्यों की अनदेखी करके बाकी हमने रचा तब हमारा पतन हुआ।
मोहन भागवत के व्याख्यान से पहले संघ विचारक और दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर बजरंग लाल ने कहा कि इस आयोजन के समय को लेकर किसी भी तरह के कयास न लगाए जाएं, जो लगाए जा रहे हैं कि 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले इस तरह का आयोजन क्यों किया गया। वहीं मोहन भागवत का कहना था कि विविधताओं से डरना नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए, चूंकि परंपरा में समन्वय एक मूल्य है जो मिलजुल कर रहना सिखाता है।
डॉक्टर एडगेवार हमेशा कहते थे कि अपने दुर्वस्था का कारण अंग्रेजों को इस्लाम का आक्रमण हुआ, इसलिए मुसलमानों को कब तक देते रहोगे। ये हुआ कैसे कि हजारों मील दूर से मुट्ठी भर आक्रमक आए और सोने की चिड़िया कहलाने वाला सूरमाओं का भारत उन्होंने देखते देखते जीत लिया। तुम्हारी कोई कमी है, उसको ठीक करो।
RSS के सरसंचालक ने डॉक्टर हेडगेवार की चर्चा करते हुए कहा कि कभी कभी वो पूछा करते थे कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है।
कभी कभी वो कहते थे, आज देश की प्रमुख समस्या आपको कौन सी लगती है। मैं भी उनका अनुकरण करता हूँ इस प्रश्न के उत्तर में। वो कहते थे सबसे बड़ी समस्या यहाँ का हिंदू है। अपने मूल्यों को भूल कर हमने जब आचरण शुरू किया, हमारा पतन शुरू हुआ। विस्तार में मैं जाता नहीं क्योंकि बहुत समय लगेगा, दो दिन में नहीं होगा, लेकिन आप अध्ययन करेंगे जाएंगे तो अपने देश के पतन का प्रारंभ हमारे पतन से हुआ है।
कार्यक्रम के पहले दिन राजनयिकों और धर्मगुरुओं की शिरकत तो दिखी, मगर राजनीतिक दलों से प्रतिनिधित्व कम नजर आया, जबकि संघ की तरफ से 40 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया था। आयोजकों को लगता है कि कार्यक्रम के अगले दो सत्रों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी अच्छी संख्या में शामिल हो सकते हैं। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
व्याख्यान में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कांग्रेस पार्टी का भी नाम लिया और स्वीकार किया कि देश की आजादी के लिए चले आंदोलन में कांग्रेस के कुछ नेताओं की भूमिका अहम रही। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
एक धारा ये निकली कि नहीं, अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है। सत्ता किसकी है, इसका क्या महत्व है, लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष, जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है, ऐसे पैदा हुए और देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया। एक बड़ा योगदान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का है।
संघ प्रमुख का ये बयान चर्चा का विषय बन रहा है और RSS से सवाल किए जा रहे हैं। मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शुक्र है RSS को, कांग्रेस पार्टी के महान योगदान के बारे में कुछ एहसास तो हुआ। मोदी जी को अब कांग्रेस की आलोचना बंद कर देनी चाहिए। अब ये भी बताया जाना चाहिए कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब RSS कहां था। यही सवाल महागठबंधन में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव का भी है। उन्होंने पूछा है कि आजादी के आंदोलन में RSS की क्या भूमिका थी। कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी RSS के घोर आलोचक रहे हैं और उन्होंने अपने भाषण में RSS के लोगों के जरिए महात्मा गांधी को गोली मारे जाने तक की बात कही है, जिसके लिए संघ उन्हें अदालत के दरवाजे तक भी ले गया है। हाल में लंदन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने RSS की तुलना मिस्र के अतिवादी इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। ये चर्चा अब आगे कौन सा रुख अख्तियार करेगी, BBC आपको ताजा जानकारी देता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी शासित गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की सेहत बीते कुछ वक्त से खराब है। खराब सेहत के चलते पर्रिकर इन दिनों दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच कांग्रेस ने गोवा में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया है। पार्टी के 14 विधायक कल राज्यपाल को सरकार बनाने संबंधी एक पत्र सौंपने पहुंच गए। हालांकि गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा फिलहाल गोवा से बाहर हैं। आखिरकार गोवा में सरकार बनाने के कांग्रेस के दावे में कितना दम है और क्या बीजेपी के पास मनोहर पर्रिकर के अलावा कोई दूसरा चेहरा मौजूद है? BBC संवाददाता नवीन नेगी ने यही सवाल पूछे गोवा में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई से।
देखिए, बात तो यह है कि गोवा की विधानसभा कुल मिलकर 40 सीटों की है। वो 40 सीटों में सबसे बड़ी संख्या जो है वो कांग्रेस के साथ है, जो 16 उनके विधायक हैं। फिर भी वो सरकार नहीं बना सकी क्योंकि 14 भाजपा के हैं, 3 गोवा फॉरवर्ड के, 3 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के, 3 निर्दलीय है विधायक और 1 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये बाकी जो लोग थे वो सब मिला के उन्होंने, भाजपा ने सरकार बना दी। लेकिन अभी ये तो बात ऐसी है कि इसमें से मनोहर पर्रिकर खुद जो मुख्यमंत्री है और 2 मंत्रीगण जो भाजपा के हैं, वो 3 लोग अस्पताल में हैं और उनकी वो अभी तक अस्पताल से नहीं आ सकते। तो भाजपा के पास रह गए सिर्फ 11। 11 में एक जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ रहते हैं सिर्फ 10 विधायक भाजपा के साथ, और गोवा फॉरवर्ड के 3, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 3, और जो 3 निर्दलीय है उनमें से 2 मंत्रीगण है। ये सब मिलके उनकी संख्या होती है सिर्फ 18। तो दूसरे बाजू में जो होते हैं तो 1 निर्दलीय, 1 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के 16, इनके भी सिर्फ 18 ही होते हैं। तो वो इक्वल होते हैं। अभी मनोहर पर्रिकर की जो हेल्थ बिगड़ रही है दिन 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 ब दिन, तो उनके बदले में किसी को लाया जाए, ये प्रश्न पर ऊपर सब जो राज्य की परिस्थिति गोवा में पैदा हुई है, तो इसमें और किसी को लाया तो ये दो पक्ष जो है, गोवा फॉरवर्ड और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, जो अभी तक पर्रिकर के साथ है, उन्होंने पहले भी बताया है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी में कि हम पर्रिकर के साथ रहेंगे, पर्रिकर के सिवा और कोई आया तो हम उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा। और जो दो निर्दलीय है और वो मंत्रीगण है, वो कांग्रेस के साथ भी गए, अभी उनके 18 है तो 16 और एक निर्दलीय और एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और जो निर्दलीय मंत्री है वो उनके साथ गए, तो कांग्रेस की सरकार भी बन सकती।
क्या कदम उठा सकती है बीजेपी अगर पर्रिकर मुख्यमंत्री पद में नहीं रहते हैं तो?
एक तो ऐसा है कि पर्रिकर मुख्यमंत्री पद में नहीं रहते हैं तो थोड़े लोग बोल रहे हैं, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि उन्हीं का, भाजपा का ही दूसरा कोई मंत्री मुख्यमंत्री बना दिया जाए, दूसरा विधायक, नहीं तो बाहर से कोई दूसरा आ जाए, ऐसी भी बात चल रही थी, लेकिन वो अभी बोल रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं बताया। लेकिन उन्होंने गोवा फॉरवर्ड और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी को बताया था कि आप आके भाजपा में शामिल हो जाइए, आपका पक्ष छोड़ के शामिल हो जाइए, लेकिन अभी तो ये पक्ष कह रहे हैं कि अभी नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये कुछ भी नहीं हुआ तो वो प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं।
अगर पर्रिकर के जाने के बाद कौन ऐसा नेता बीजेपी के अंदर दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकता है गोवा में, क्या कोई ऐसा चेहरा है इस वक्त मौजूद जो उनकी जगह ले सकता है?
एक तो भाजपा की बात ऐसी है कि भाजपा कोई केडर वाली जो विधायक है उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देती है, केडर वाले नहीं, जो आरएसएस बैकग्राउंड से आए हैं, तो आरएसएस बैकग्राउंड से आए सिर्फ एक हैं जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष है, वो प्रमोद सावंत, और बाकी सभी जो है वो आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं है, तो लगता है कि और किसी को नहीं बनाएंगे। लेकिन प्रमोद सावंत को अपोजिशन है बहुत लोगों से, क्योंकि ये बहुत नए है, इसलिए तो श्रीपाद नाइक जो अभी आयुष मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, उन्हें वापस लाया जा सकता है और उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी भी बात हो रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है।
गोवा में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ी, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई। कार्यक्रम में अब रुख झारखंड का। यहां बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो शायद आप श्रोता बंधुओं ने भी कल देखा होगा। निशिकांत दुबे गोड्डा जिले में एक पुल का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद एक बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके पांव धोए और फिर उस पानी को पी लिया। निशिकांत दुबे ने पांव धोने वाली तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड की तो लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। आखिर कौन है वो बीजेपी कार्यकर्ता जिन्होंने निशिकांत दुबे के पांव धोकर पानी पिया? सुनिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
पवन शाह के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे फेसबुक पर भी नहीं है, फिर भी उन्हें पता है कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के पैर धोकर पानी को पीने की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इस कारण वे मीडिया की सुर्खियों में हैं। वे तस्वीरें उनके गाँव के लोगों के स्मार्टफोन से घूमते हुए उनके घर के लोगों तक भी पहुंची हैं, लेकिन उन्हें कोई मलाल नहीं। वे इसे भक्त और भगवान के बीच का मसला बताते हैं। उनके लिए वह पानी नहीं चरणामृत है, क्योंकि सांसद निशिकांत दुबे कथित तौर पर उनके भगवान हैं। पवन शाह ने बीबीसी से कहा,
मनसा क्या, मैंने वादा किया था, हमारे वादा पे माननीय निशिकांत दुबे जी ने, हमने जो बात किया था माननीय सांसद जी से, वो उन्होंने आज हमारे ग्रामीण वासी को, पंचायत वासी को बुलने के लिए एक पुल दिया, जिसके हम वादा किए थे अपने आप में कि हम चरण धो के पिएंगे भैया आपका। इस बात का माननीय सांसद जी को याद रहे या ना रहे, लेकिन हम तो भाई पक्का एकदम याद वाले आदमी हैं और हमको याद रहता है ये चीज़। तो मेरे आत्मा में एक अंदर का दिमाग में हमारा आया और मैंने इस तरह का वादा किया था, और मैंने सोचा कि नहीं, आज जो विकास पुरुष कहला रहे हैं ये, इसने विकास किया, और भगवान के रूप में, मतलब भगवान जो आते हैं मनुष्य के रूप में आए थे रामचंद्र जी, तो उसी तरह ही जो है भगवान के रूप में आए हैं।
रविवार की शाम वह तस्वीर वायरल होने के अगले दिन सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोमवार के दोपहर पवन शाह को गोड्डा में मीडिया के सामने पेश किया। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने पवन को ऐसा करने से मना भी किया था।
जो कन्हारा गाँव है, कन्हारा गाँव में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने से कोई मतलब, क्योंकि वो पूरा गाँव, मैं हमेशा कहता हूँ कि उस गाँव में जो बच्चा भी पैदा होता है वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का ही समर्पित बच्चा पैदा होता है, मतलब वो गांव भारतीय जनता पार्टी का कट्टर गांव।
पवन शाह के गांव कन्हवारा के मुखिया परमानंद शाह ने बताया कि उनके गांव के लोगों ने सांसद निशिकांत दुबे से उनके गांव और गोड्डा शहर के बीच बहने वाली कजिया नदी पर पुल बनवाने की मांग की थी, ताकि गोड्डा और कन्हवारा के बीच की दूरी कम हो सके। तब पवन ने यह मांग पूरी होने पर सांसद के पैर को धोकर पीने की बात कही थी। कल हुई घटना उसी प्रण का परिणाम है। परमानंद शाह ने बीबीसी से कहा।
ये तो कार्यकर्ता थे सर, और पार्टी के आपका महामंत्री थे, और अभी तो सर मैंने कि महामंत्री नहीं है, पूर्व महामंत्री थे। कार्यकर्ता है सर, थोड़ा जिद्दी क्वालिटी का कार्यकर्ता है, और यह अपने आप में समर्पण। हम लोग भी नहीं जानते थे कि ये सर इस तरह का ये अथी करेगा। बार बार मना करने पर जो है सांसद महोदय को हम देखे कि सांसद महोदय नहीं चाहते, विचित्र ढंग का ये मैंने अपना रोल किया, और ये रोल कोई नहीं जानता था सर, हम लोग भी नहीं जानते थे।
दरअसल दसवीं पास पवन शाह के लिए यह कोई पहला मामला नहीं है जब उन्होंने ऐसी हरकतें की हों। कुछ साल पहले एक दोस्त के कहने पर वह खाई में कूद कर अपने पैर चोटिल करा चुके हैं, और साल 2014 में भाजपा की जीत के बाद उन्होंने अपनी अंगुली काट कर उसके खून का चंदन लगाया था। पवन शाह अब और क्या करते हैं यह जानने के लिए हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए गुड्डा में।
और अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं अखबारों में क्या कुछ खास छपा है। सर्वप्रिया सांगवान अखबारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं, जानते हैं उनसे क्या है आज की सुर्खियां।
मानसी, इंडियन एक्सप्रेस की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि जो विजय माल्या का केस है उसमें सीबीआई ने एक बहुत बड़ी गलती की है। जो पहले उन्होंने एक लुकआउट नोटिस जारी किया था 16 अक्टूबर 2015 को, उसमें तो उन्होंने कहा था कि भारत विजय माल्या को भारत ना छोड़ने दिया जाए, लेकिन 24 नवंबर 2015 का जो उनका लुकआउट नोटिस था उसमें एक लेटर भी था साथ में, जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था सीबीआई ने, उसमें लिखा था कि डिटेंशन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, विजय माल्या की डिटेंशन की। और सोचे कि 4 महीने बाद ही माल्या 2 मार्च 2016 को भारत छोड़ गए, और तब से उन्हें वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं, और ब्रिटेन में सरकार को उन्हें वापस लाने के लिए केस भी लड़ना पड़ रहा है, पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। दूसरी खबर है कि भारत में हर 5 दिन में एक सीवर में उतरने वाले मजदूर की मौत होती है। इस देश में आज भी तमाम कानूनों के बाद धड़ल्ले से मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है। किसी का परिवार बेसहारा होता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। और नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का आंकड़ा है कि जनवरी 2017 से अब तक 123 ऐसे लोगों की मौत हो चुकी है। और एक और खबर है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा, उन्होंने कहा है कि जो अब 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो गिरफ्तार किए गए हैं भीमा कोरेगांव हिंसा केस में, उनके बारे में दीपक मिश्रा ने टिप्पणी की है कि अगर पुलिस ने कोई भी सबूत खुद से बनाया होगा तो उसके बाद अगर हमें पता चलता है कि कोई सबूत बनाया है तो हम SIT गठन करेंगे,
यानी फर्जी सबूत ना पेश करें।
जी हाँ, तो उन्होंने पहले ही उनको चेतावनी दे दी है। इसी से संबंधित एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी है जो नंदिता राव ने लिखा है, और वो इसी पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के बारे में है, जो इसी एक्ट के तहत उन पे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा एक और जो खबर है वो ये कि सरकार ने सोमवार को फैसला किया है कि 3 बैंकों को का विलय हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। और सरकार सोच रही है कि मतलब उनका मानना है कि इससे जो बैलेंस शीट्स हैं बैंक्स की थोड़ी सी उनमें सुधार होगा। और इसके अलावा दिल्ली में जो डेंगू के जो केसेस हैं पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।
जी, विस्तार से अखबारों की समीक्षा के लिए धन्यवाद सर्वप्रिया सांगवान। पिछले कुछ सालों में भारत में काली नस्ल के अफ्रीकियों पर कई हमले हुए हैं और उनके द्वारा भारतीयों पर नस्लीय भेदभाव के इल्ज़ाम भी अक्सर लगाए गए हैं। इन खबरों पर अफ्रीका में किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, हमारे संवाददाता बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं, जहां उन्होंने पाया कि वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ भी नस्लीय भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा पेचीदा है। प्रवासी भारतीयों के सबसे बड़े शहर डरबन से उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
ये है एक झलक एक वीडियो की जो पिछले साल इसी महीने सामने आया था, और जिसमें 4-5 व्यक्ति एक अफ्रीकी युवा को एक पोल से बांधकर पीटते देखे जा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में काली नस्ल के अफ्रीकियों पर इसी तरह के कई हमले हुए हैं और उनके द्वारा भारतीयों पर नस्ली भेदभाव के इल्जाम अक्सर लगाए गए हैं।
Racism I experienced in India.
मैंने भारत में जितना नस्ली भेदभाव का अनुभव किया है उतना किसी देश में नहीं किया।
ये है दक्षिण अफ्रीका के ओयामा मुगदुसो। काली नस्ल के ओयामा हमें बता रहे हैं मुंबई में अपने रहने का अनुभव और उनके साथ होने वाले भेदभाव की घटनाएं।
उदाहरण के तौर पर जब कभी हम अपने यूरोपीय साथियों के साथ किसी भी रेस्तरां में जाते थे तो पहले हमारा स्वागत नहीं किया जाता था। जब हम किराए के मकान की तलाश में निकलते थे तो हमारे साथ दफ्तर के दो साथी होते ताकि अगर कोई समस्या आए तो वो उसे दूर कर सकें।
यह जोहान्सबर्ग ओयामा यहीं के निवासी हैं। वो कुछ साल पहले मुंबई में एक बड़ी विदेशी कंपनी के लिए काम किया करते थे। जोहान्सबर्ग में हमारी मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि उनके ऊंचे पद के बावजूद वो भारत में नस्ली भेदभाव के शिकार हुए। यहाँ कर पता चला कि अफ्रीकी देशों में इन घटनाओं के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ भारत में रहने वाले अफ्रीकी समय से पहले अपने देश को लौट जाते हैं और कुछ भारत जाने वालों ने अपना दौरा स्थगित कर दिया है और कुछ भारतीयों को नस्लवाद कहते हैं।
When we hear of attacks against Africans in India, it becomes frustrating for us. It begins to make us wonder.
जब हम भारत में अफ्रीकियों पर हमलों के बारे में सुनते हैं तो बहुत निराशा होती है। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम इस मुद्दे को जिस तरह से उठा रहे हैं वो काफी है या नहीं, या फिर क्या हम इसका हिंसक बदला लें?
ये विवादास्पद युवा नेता फुमलानी एम्फेके हैं। उनकी पहचान एक भारतीय विरोधी नेता के रूप में है। एम्फेके जैसे नेताओं के कारण ये दक्षिण अफ्रीका में एक सियासी मुद्दा बन गया है। कुछ तो प्रवासी भारतीयों को वापस भारत भेजना चाहते हैं, लेकिन पुमलानी एम्फेके कहते हैं ये मसले का हल नहीं है।
Now, whether I am saying as personally that Indians in their numbers should leave,
ज़ाती तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीयों को देश छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मसला उनके यहाँ रहने का नहीं है, बल्कि उनकी मानसिकता का है, उनकी सोच का है हमारे प्रति।
यहाँ आकर पता चला कि यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ भी काली नस्ल के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आर्थिक स्वतंत्र सेनानी यानी इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स पार्टी के 37 वर्षीय अध्यक्ष जूलियस मलेमा एक लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने जून में भारतीय समुदाय के बीच उस समय खलबली मचा दी जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि यहाँ के भारतीय समुदाय के अधिकतर लोग रेसिस्ट हैं, नस्लवाद हैं।
अधिकांश भारतीय रेसिस्ट हैं, भेदभाव करने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी भारतीय नस्लवादी हैं। भूतपूर्व संवैधानिक न्यायाधीश याकूब, जो खुद भारतीय हैं, वो कहते हैं कि 90% भारतीय नस्लवादी हैं।
भारतीय मूल के लोग कहते हैं कि वो हमारी कामयाबी से चलते हैं, इसलिए हमारे खिलाफ भेदभाव के इल्जाम लगाते हैं। गुजराती मूल के एक कामयाब प्रवासी भारतीय अश्वनी त्रिकामी कहते हैं,
साउथ अफ्रीका अत्यारे इकोनॉमिक क्राइसिस छे, એટલે ये लोगो
दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक संकट है जिसके लिए उन्हें बलि के बकरे की तलाश होती है। भारतीय उनके लिए एक आसान लक्ष्य बन जाते हैं। भारतीयों ने बहुत अच्छा किया है, वे बहुत कामयाब हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, मकान हैं, पैसे हैं।
असमें दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव का मामला थोड़ा पेचीदा है। 20वीं शताब्दी के लगभग अंत तक गोरी नस्ल वालों की हुकूमत थी, जिसके दौरान प्रवासी भारतीय और काली नस्ल के लोगों के खिलाफ खुलकर नस्ली भेदभाव किया गया। राष्ट्रपिता नेल्सन मंडेला ने 1994 में देश की आजादी के बाद एक इंद्रधनुष समाज बनाने पर जोर दिया था, लेकिन आज भी दक्षिण अफ्रीका का समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है और अपने अपने इलाकों में रहता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार काली नस्ल के लोग देश की आबादी का 76% है, जबकि गोरी नस्ल के लोग 9% और भारतीय मूल के लोग आबादी का केवल 2.5% है। भारतीय मूल के लोगों की पहली खेप 158 साल पहले डरबन शहर में आई थी ताकि यहाँ के गन्ने की खेती में और रेल की पटरियों के बिछाने में मजदूरी कर सके। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें यहाँ जबरदस्ती लाया था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के कारण आज ये समुदाय काफी कामयाब माना जाता है। जुबैर अहमद, बीबीसी जोहान्सबर्ग।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं सर्वप्रिया सांगवान से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि सिंगापुर सम्मेलन के आयोजन में अहम भूमिका निभा चुके मून जेई इन उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने $200 अरब के चीनी उत्पादों पर नया टैरिफ लगाया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि अमेरिका में अब शरणार्थियों को बसने की इजाजत कम लोगों को दी जाएगी, यानी सालाना दी जाने वाली अनुमतियों को घटाकर 30,000 कर दिया जाएगा। जुलाई में थाईलैंड गुफा रेस्क्यू में हिस्सा लेने वाले ब्रिटिश गोताखोर ने अरबपति इलॉन मस्क पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कार्यक्रम दिन भर में। सभी साथियों समेत हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।